भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय निमीपति ददो शापान् गुरवे धर्म वर्तिने त्वापी पतात देहो लोभ धर्मम अज्ञानतः। कल हमने आपको समझाया था कि महाराज निमि महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र हैं और उनकी ये भावना थी कि एक जिंदगी का एक समय का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वो स्वरूप सिद्धि जीव थे और उन्होंने पुरोहित वशिष्ठ से निवेदन किया था कि उनके यज्ञ के पुरोहित बने। तो वशिष्ठ ने कहा मैं तैयार हूं पर आपकी यज्ञ का पुरोहित मैं बनूंगा इंद्र के यज्ञ समाप्त करने के बाद, क्योंकि वहां उन्हें लालच था कोई आर्थिक सुविधा की प्राप्ति का। महाराज भूमि ने कहा कि मैं आपकी राह नहीं देख सकता। महाराज निमि ने सोचा कि अगर मैं वशिष्ठ की राह देखूं इतने साल बीत जाएंगे और मैं यज्ञ आरंभ नहीं होगा। ये जो घटना बीती है ये बीती थी त्रेता युग में। वो त्रेता युग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या था? बड़े बड़े यज्ञ। तो महाराज निमि ने निर्णय कर लिया कि मैं दूसरे पुरोहितों का सहयोग लेकर यज्ञ शुरू कर देता हूं। तो जब वशिष्ठ ने देखा, जब वशिष्ठ आए इंद्र का यज्ञ समाप्त करके, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने यह देखा कि उनके शिष्य ने उनके आदेश का उल्लंघन कर दिया है, उनके आदेश का पालन नहीं किया। गुरु ने कहा था तुम यज्ञ शुरू मत करो, मेरी राह देखो। तो निमि ने राह नहीं देखी, उन्होंने कहा कि मुझे तुरंत ही भगवान के शरणागत होना चाहिए, जीवन का क्या भरोसा। तो उन्होंने कहा विशेष ने कि इस शिष्य ने मेरे आदेश का उल्लंघन कर दिया है, तो उन्होंने उन्हें शाप दिया। क्या शाप? अपने को पंडित मानते हो तुम, भौतिक शरीर तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। अपने को सोचते हो कि तुम मेरे से ज्यादा जानते हो, तुम्हारा तो भौतिक शरीर नष्ट हो जाएगा। जैसे कि शुक्रदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं महाराज निमि ने तो कुछ अपराध नहीं किया था, उल्टा महाराज निमि ने तो यही कहा कि मुझे भगवान के शरणागत तुरंत होना चाहिए। मेरा गुरु कह रहा है कि ठहर जाओ, अभी मुझे इंद्र का यज्ञ समाप्त करने दो, फिर तुम्हारे यज्ञ में मैं पुरोहित बनूंगा। तो महाराज निमि ने तो कुछ अपराध नहीं किया। तो बिना किसी कारण के वशिष्ठ ने महाराज निमि को शाप दिया था, और क्योंकि बिना किसी अपराध किए हुए उन्हें व्यर्थ में ही ये शाप प्राप्त हुआ था, तो निमि ने भी शाप दिया वशिष्ठ को। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी उन विषयों की चर्चा करते हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। एक यह है कि हमें लालच नहीं रखना चाहिए, दूसरा हमें ब्राह्मणों के क्या गुण होने चाहिए, क्योंकि वशिष्ठ वो पुरोहित थे पर वो शुद्ध भक्त नहीं थे, इसलिए वो इंद्र के यज्ञ में जाने को तैयार थे मुख्य पुरोहित के रूप में, क्योंकि वहां उन्हें कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा था। श्रीमद् भागवत में एक और कथा हम पढ़ते हैं जिसमें एक घटना देखते हैं इसी घटना के प्रकार। वो घटना है बाली महाराज की और शुक्राचार्य की। शुक्र वामन देव भगवान के अवतार आए थे यज्ञ में भिखारी ब्राह्मण के रूप में। और बाली महाराज से उन्होंने क्या कहा, उन्होंने तो पहले कुछ नहीं मांगा। बाली महाराज यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञशाला में पहुंच गए वामन देव जी। वामन देव जी पहुंचे उस यज्ञशाला में और बाली महाराज ने देखा इतने खूबसूरत, इतना खूबसूरत ब्राह्मण लड़का उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। आखिर भगवान में छह गुण है असीम मात्रा में, जिनमें एक है ऐश्वर्य समाग रहस्य वीर रसा यशस ज्ञान वैराग्यवाचार सन्न भागा इतना, एक है सबसे खूबसूरत है। तो बाली महाराज ने कहा आप ब्राह्मण हो, इतने खूबसूरत हो, मेरे यज्ञशाला में आए हो, मैं क्या सेवा कर सकता हूं आपकी। तो वामन देव जी ने कहा कि लेटर सॉफ्ट ये टू लव, वामन देव ने कहा कि अगर तुम सेवा करना चाहते हो ठीक है, इतना स्थान दे दो जहां की मैं तीन कदम रख सकूं। तो बाली महाराज ने कहा तुम बालक हो पर ज्यादा होशियार नहीं हो, इतने धनी व्यक्ति के पास आकर क्या इतना थोड़ा कुछ मांगना चाहिए, कुछ और मांगो। धनी व्यक्ति के पास जाकर चावल के दाने नहीं मांगते। आप लोग जब लाइफ नंबर बनाने जाते हो तो व्यक्तियों से ये तो नहीं कहते चावल के दो तीन दाने दे दो, आप कहते कम से कम मेंबर बनो या कुछ, अगर उसमें ज्यादा योग्यता हो तो ज्यादा सेवा करो। तो बाली महाराज ने कहा कि आप ऐसे कुछ और मांगो, इतना थोड़ा मांगने का कुछ लाभ नहीं। पर वामन देव जी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को वश में नहीं किया, अगर आप सारे विश्व का धन भी उसे दे दोगे तो वो संतोष नहीं होगा। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया तो थोड़े में ही संतोष रहेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप मुझे आकर्षित मत करो और मांगने के लिए, मैं इतने में ही संतोष हो जाऊंगा। शुक्राचार्य, शुक्र का अर्थ है सीमन, प्रदायशी पंडित है। शुक्राचार्य को पता था कि ये लड़का वामन देव, ये बालक सादा ब्राह्मण नहीं है। उन्हें पता था कि ये भगवान का रूप है, स्वयं भगवान आए हैं और आए हैं उनके शिष्य की सारी संपत्ति लेने के लिए। और शुक्राचार्य को यह घबराहट हो गई कि अगर मेरा शिष्य सारी संपत्ति अर्पण कर देगा इस ब्राह्मण भिखारी को तो उस बेचारे के पास क्या रहेगा और मुझे क्या मिलेगा। असली चिंता ये थी कि मुझे क्या सुविधा मिलेगी, जब मेरा शिष्य धनी शिष्य ही भिखारी बन जाएगा तो मेरी सेवा कौन से करेगा। तो शुक्राचार्य ने कहा पाली महाराज से तुम तो मूर्ख हो, तुम ये नहीं समझ रहे कि ये लड़का ये बालक आया है तुम्हारे सारे धन को छीनने के लिए। तुम कह देना कि तुम मखौल कर रहे थे उसके साथ, जिस प्रकार एक पति पत्नी से मखौल करता है, एक मित्र अपने मित्र से मखौल करता है, उसी प्रकार तुम कह देना कि तुम मखौल कर रहे थे। तुमने कभी ये नहीं कहा था हृदय से कि तुम सारे तीन कदम उन्हें इतनी पृथ्वी दोगे जाके वो तीन कदम रख सके। बाली महाराज ने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया। वहां बाली महाराज ने कहा कि ये पृथ्वी पहाड़ों का बोझा उठा सकती है। पहाड़ का क्या कम बोझा होता है? कोई स्केल है दुनिया में जो कि पहाड़ों को का वजन कर सके? आपका वजन आप कर सकते हो, बड़ी मशीन का वजन कर सकते हो, तो पहाड़ों का वजन कोई कर सकता है? हवाई जहाज का भी वजन हो जाता है तो पहाड़ों का वजन होता है? पहाड़ों का वजन कोई करने का कर ही नहीं सकता। तो बाली महाराज ने कहा ये पृथ्वी पहाड़ों का बोझा उठा सकती है, सागर और नदियों को उठा सकती है, पर झूठे व्यक्ति का बोझा नहीं उठा सकते, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो उन्होंने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। शुक्राचार्य ने कहा तुम झूठ बोल दो, कि ये कह देना कि तुम अखाओ कर रहे थे, तुम्हारे हृदय की इच्छा नहीं थी स्थान देने के लिए जहां तीन कदम रख सकें। पर बाली महाराज ने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। क्यों? वैसे तो शास्त्र में कहा गया कि गुरु का आदेश का विरोध नहीं करना चाहिए। गुरु की इच्छा रहनी चाहिए कि मेरा शिष्य परम भगवान के शरणागत हो जल्दी से जल्दी। तो अगर गुरु शिष्य को रोक रहा है परम भगवान के शरणागत होने से, तो उस स्थिति में आप गुरु के आदेश का विरोध कर सकते हो। जैसे बाली महाराज तैयार थे, उन्हें जब पता लगा कि ये वामन देव, ये ब्राह्मण परम भगवान का रूप है और वो परम भगवान आए हैं उनके सारे धन को लेने के लिए, संपत्ति को लेने के लिए, वो तो खुश हो गए। उन्होंने कहा मृत्यु के समय तो सब मेरे से जुदा हो ही जाएगा, तो उससे अच्छा ये मेरे से जुदा आज हो जाए और भगवान के चरणों में जाए। लोग इतने मूर्ख हैं, वो अपनी संपत्ति धन दौलत को साथ में रखना चाहते हैं। हम मांगने जाओ, 10 बार मांगने जाओ, थोड़ा सा देंगे और ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे आप पर एहसान कर रहे हैं बहुत। पर वो भूल जाते हैं कि मृत्यु के समय तो सारी संपत्ति हाथ से चले जाएगी, और मृत्यु के बाद नहीं तो जिंदा होते होते भी जा सकती है। अनेक व्यक्ति हमारे शत्रु हैं। श्रीमद् भागवत में एक कथा पढ़ते हैं हम, एक बहुत धनी व्यक्ति की, ये बिहार में रहता था, बहुत धनी व्यक्ति था, तो साथ में बहुत कंजूस भी था। इतना कंजूस कि उसकी पत्नी और बच्चे भी उसके दुश्मन बन गए थे। कोई पार करता था, पैसे कमाता था और जोड़ता था, ना पत्नी को एक कौड़ी देता था, ना बच्चों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, बात ही छोड़ दो। तो सब उसके दुश्मन बन गए। ये व्यक्ति जो कंजूस था, धन को बढ़ते हुए देखकर बहुत ही प्रसन्न होता था, और रिश्तेदार और बच्चे आते थे जब थोड़ा पैसा मांगने के लिए, नहीं नहीं कुछ नहीं। तो हंसते हंसते पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, मित्र सब शत्रु बन गए, और उसकी सारी संपत्ति हंसते हंसते उसके हाथ से चले गई। प्रकृति द्वारा कई जगह घाटा आ गया, कई पत्नी ने, बच्चों ने सब मिलकर सब चुरा ली संपत्ति। जब उसकी सारी संपत्ति चले गई हाथ से, आरंभ में तो उसे बड़ा शोक पहुंचा। मैं इतना धनी था, मैं गरीब हो गया हूं, अब मैं तो एक कौड़ी नहीं है। पर उस शोक के द्वारा उसमें त्याग की भावना आ गई और वो परम भगवान मुकुंदक की शरणागत हो गया, और फिर घर छोड़कर यात्रा करने लगा अलग अलग स्थानों में, पर भगवान का गुणगान करते हुए। जहां वो जाता था लोग उसको ताना मारते थे, कहते थे देखो अब भिखारी बन गया, तो घर से निकल गया। जब पैसा था तो घर में था, जब घाटा आ गया धंधे में तो घर छोड़ दिया और घर वालों ने निकाल दिया। कई जगह वो जाता था लोग उस पर पेशाब करते थे, पत्थर फेंकते थे, पर वो घबराया नहीं। भगवान के गुणगान में वो जुड़ा हुआ था, यही प्रार्थना कर रहा था कि जिसने मुकुंद हरि की शरण ली वो इस भौतिक संसार के पार जा सकता है और कोई उपाय नहीं। तो भगवान का गुणगान करते करते उसने अपने जीवन बिता दिया और उसके हृदय में कोई पछतावा की भावना नहीं थी। तो ये कथा भगवत में प्राप्त होती है। भगवत में कहा गया है कि धनी व्यक्ति के अनेक शत्रु हो जाते हैं, एक तरह से रिश्तेदार शत्रु हो जाते हैं। रिश्तेदार कहते हैं तुम धनी बने हो, हमें भी हमारा हिस्सा दो, आखिर तुम हमारे चाचा दादा दादी रिश्तेदार हो। तो व्यक्ति देना नहीं चाहता, फिर मित्र शत्रु हो जाते हैं। मित्र कहते तुम हमारे मित्र हो, हमें भी कुछ दो, लाभ दो। फिर सरकार शत्रु हो जाती है, सरकार कहती है तुमने कमाया है क्योंकि हमारा शासन ठीक चल रहा है तो हमें भी टैक्स दो, है ना। तो सरकार शत्रु हो जाती है, सरकार गरीबों के पीछे थोड़ी जाती है, अमीरों के पीछे जाती है ना, हमें टैक्स दो, टैक्स ही देना तो जाए रिश्वत दे दो। और चोर आपके दुश्मन हो जाते हैं, चोर लोग कभी गरीबों के घर में थोड़ी पहुंचते हैं, उधर अमीरों के घर में पहुंचते हैं। सच बात है, गरीब व्यक्ति झोपड़पट्टी वाला तो ताला मारे बगैर सोता है, यदि रास्ते में झोपड़पट्टियां देखते हो, ताला देखते हो किसके घर में, क्या खुले फुटपाथ में सो रहे हैं। धनी व्यक्ति 50 ताले लगाता है, 10 कुत्ते रखता है, 50 चौकीदार रखता है, सिक्योरिटी सिस्टम रखता है। क्यों? क्योंकि उसके अनेक दुश्मन बन गए हैं, ये चोर उसके दुश्मन है, तो उसको भय रहता है चोर आ जाएंगे, तो इसलिए वो अपने आप को बचाता है। तो भागवत में कहा गया है कि धनी व्यक्ति के बहुत शत्रु बन जाते हैं, चोर, सरकार, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, मित्र, सब यही सोच रहे हैं कि मुझे इसे लाभ कैसे मिले। अच्छा, तो अगर धन कमाना भी है तो धन को अगर भगवान के सेवा में उपयोग नहीं करो तो धन जो है वो हमारा दुश्मन बन जाता है। जैसे भागवतम में कहा गया है प्रथम स्कंद में, चार स्थितियों में आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन करना कठिन हो जाता है। एक, अगर आपके पास बहुत धन हो, जब आप धन कमा लो फिर आप क्या सोचते हो, मुझे साधुओं की क्या जरूरत, मुझे किसके सहयोग की क्या जरूरत, धन से जो चाहिए मैं प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए धनी व्यक्ति कहां आते हैं मंदिर, कहां आकर बैठते हैं उपदेश में, आते हुए अगर नाम 5 मिनट ले फिर चले जाते, थोड़े बहुत आते हैं पर बहुत कम। तो धन, धन आपका दुश्मन बन जाता है अगर आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो। जैसे यहां महाराज निमी की कथा पढ़ रहे हैं, जो महाराज निमी थे उनके हृदय में तो कोई शंका नहीं थी, वो तो स्वरूप सिद्धि जीव थे, तो धन किसे वो प्रभावित आकर्षित नहीं ही हुए। फिर दूसरा शत्रु आध्यात्मिक मार्ग में है भौतिक ज्ञान। जब भौतिक ज्ञान, भौतिक तालीम हो बहुत, तो हम उस तालीम के द्वारा क्या सोचते हैं कि भगवान की क्या आवश्यकता। कल हम अखबार में देख रहे थे कि एक भारतीय व्यक्ति, एक बंगाली भारतीय इकोनॉमिस्ट को अभी नोबेल प्राइज मिला है, हा? कोई मिस डॉक्टर सेन या कुछ नाम है, ठीक है ठीक। तो हमने खाली हेडलाइन देखा कल, उसने कहा कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, हेडलाइन था, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, मैं तो मदर थेरेसा में विश्वास करता हूं, भगवान में नहीं। मदर थेरेसा जो काम करती है उसमें विश्वास है, भगवान में नहीं है। देखो, भौतिक ज्ञान है, कह रहे मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। तो इसी प्रकार के अनेक व्यक्ति हैं जिनके पास भौतिक शिक्षा, कहते हम तो भगवान में विश्वास नहीं करते। भौतिक ज्ञान आपको अंधा बना देता है। ठाकुर भक्तिनव जी ने एक प्रार्थना में कहा है कि जिस प्रकार एक भारी पगड़ी अगर किसी ने पहनी हो तो जल्दी डूबेगा। अगर पगड़ी के बगैर कोई व्यक्ति हो, पगड़ी वाला हो, तो भारी पगड़ी के कारण वो सागर में जल्दी डूबेगा। उसी प्रकार ये भौतिक ज्ञान हमें अंधा बना देता है अगर हम परम भगवान के शरणागत नहीं हो। तो ये हमारा दूसरा शत्रु। तीसरा है खूबसूरत शरीर। अगर आप खूबसूरत हो तो फिर क्या सोचते हो, खूबसूरत व्यक्ति, खूबसूरत पुरुष के पीछे स्त्रियां दौड़ती हैं और खूबसूरत औरतों के पीछे पुरुष दौड़ते हैं, तो अहंकार बढ़ जाता है। देखो सब मेरे पीछे हैं, सब सबको चाहिए हमारा सिग्नेचर। हम गए थे थोड़े दिन पहले मेरठ रथ यात्रा में, तो वहां हेमा मंदिनी का प्रोग्राम हुआ था, तो प्रोग्राम के बाद सारे लोग राह देख रहे थे, हम जाएंगे यहां पांडव से हेमा मंदिनी का दर्शन लेकर। तो जब तक उसकी मोटर नहीं निकली वो सब खड़े थे, शो खत्म हो गया था, इतनी ठंड थी, आधा घंटा लोग खड़े थे सड़क में, और जैसे उसकी मोटर गुजर कर गई सब हम भी फंसे हुए थे कि हमारी मोटर भी नहीं निकल पाई क्योंकि आगे सब ब्लॉकेज हुआ था। तो इस प्रकार व्यक्ति मोहित हो जाता है, देखो इतने लोग मुझे चाहते हैं, इतने लोग मेरे को देखने के खड़े हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम तो तुच्छ हैं और भगवान के अभिन्न अंश हैं। तो ये एक खूबसूरत शरीर हो तो हम प्रभावित हो जाते हैं इस अहंकार से। और चौथा शत्रु है आध्यात्मिक जीवन में क्या, खूबसूरत पत्नी खूबसूरत पत्नी ये चार भगवतम के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं चार चीज आपके शत्रु बन जाते हैं, एक धन, दूसरा खूबसूरती खूबसूरत शरीर, तीसरा भौतिक शिक्षा, और चौथा बहुत खूबसूरत पत्नी। अगर बहुत खूबसूरत पत्नी हो तो घर छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। प्रभुपाद जी हमें एक समय एक कथा सुना रहे थे प्रभुपाद अपने जीवन के विषय में, कि प्रभुपाद जी कि पाप के पिता ने उनके लिए चुना, पापा जी विवाह करने जा रहे थे तो उनके पिता ने कहा नहीं नहीं तुम इनके साथ करो, उनके साथ नहीं, क्योंकि पापा जी की इच्छा के पिता की इच्छा थी कि उनके बेटा कोई खूबसूरत स्त्री से शादी नहीं करे। खैर तो ये चार चीजें व्यक्ति के शत्रु बन जाती हैं। तो आप कहोगे तो स्वामी जी इसका मतलब है कृष्ण भक्ति में अगर हम प्रवेश करना चाहें तो हमें बदसूरत होना चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए, दूध घराने का होना चाहिए और बदसूरत पत्नी होनी चाहिए, तो या हम कृष्ण भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं? हाँ नहीं। इसका अर्थ यह है कि ये चार चीजें हमें मोहित कर देती हैं और माया के प्रति आकर्षित करती हैं। अगर आप आत्मज्ञानी व्यक्ति हो या अगर आपके मन में दृढ़ विश्वास है, अगर आप स्वरूप सिद्धि हो या दृढ़ विश्वास है कि कृष्णा भक्ति अवश्य है, फिर आप धन का उपयोग करोगे भगवान के सेवा में, आप कृपा करके मुख्य पुरोहित बनिएगा। और वशिष्ठ जी कह रहे नहीं नहीं अभी तुम यज्ञ शुरू मत करो, मैं मुझे दूसरा यज्ञ करके समाप्त करके आने दो, फिर तुम यही यज्ञ शुरू करना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं ब्राह्मण का धर्म है कि वो तनिक भी लोभी ना हो, तो ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। लोभी तो किसी को नहीं होना चाहिए। शास्त्र के अनुसार समाज का विभाजन किया जाता है चार वर्ण और चार आश्रम में, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मण को लोभित नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि भगवान राम ने अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दे दी थी, सीता देवी जी ने अपने सारे गहने ब्राह्मणों को बांट दिया था, सिर्फ नोज रिंग, नोज रिंग को क्या कह रहे हैं, नथनी जो नाक में डालते हैं, और सिर्फ सीता देवी जी ने एक नथनी रखी थी, बस सारे गहने ब्राह्मणों को बांट दिया था। रामचंद्र जी ने भी सारे गहने बांट दिए थे ब्राह्मणों को, देखो राजा थे सब बांट दिया। आजकल के नेता तो स्विट्जरलैंड में छिपाते हैं अपनी धन दौलत को और या दुबई में, पर यहां रामचंद्र जी ने तो सारा धन अपना सारे गहने बांट दिए थे। और ब्राह्मणों ने क्या किया, कहा धन्यवाद, ब्राह्मणों ने सब कुछ स्वीकार करके वापस लौटा दिया रामचंद्र जी और सीता देवी जी को। जब रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों से पूछा मांगो कितनी जमीन चाहिए, उन्होंने उतनी ही मांगी जितनी की आवश्यक थी। अगर आज किसी को पूछा जाए, अगर आज के ब्राह्मणों को अपना गहना दो वापस करेंगे कभी नहीं करेंगे। आज के ब्राह्मणों को पूछो तुम्हें कितना स्थान चाहिए रहने के लिए, कहेंगे हाँ 7 मंजिल का मकान चाहिए, हाँ अपने लिए सारे रिश्तेदारों के लिए वगैरह। तो ब्राह्मणों को लोभी नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद में नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देते हुए कहते हैं कि भूखे व्यक्ति को आप संतोष कर सकते हो अन्न देकर, खाना देकर, हाँ, प्यासे व्यक्ति को संतोष कर सकते हो पानी देकर, प्यास लगती है पानी पी लेते हो। क्रोधित व्यक्ति को संतोष कर सकते हो कैसे? गुस्सा करके। क्रोधित क्रोध है, गुस्सा है, चिल्लाते हो फिर नरम हो जाते हो, फिर आपको लगता है हाँ अब चिल्ला लिया बस अभी दोस्ती कर लो। तो लालची व्यक्ति को नारद मुनि जी कहते हैं कभी संतोष नहीं कर सकते, जितना प्राप्त हो उतना ही कम है उसके लिए। तो लालची व्यक्ति को संतोष करना असंभव है। इसीलिए हम देखते हैं आज के भौतिक समाज में कि जो धनी व्यक्ति हैं उनके पास आगे 10 पीढ़ी तक धन कमाया हुआ, उन्हें छुपा कर रखा हुआ है, करना मन नहीं करेंगे। क्यों? ये इच्छा कि और थोड़ा कमा लें और कमा लें और कमा लें। तो लोभ को कैसे त्यागा जाए? जैसे कि हम शास्त्र में पढ़ते हैं अज्ञानता नष्ट होती है ज्ञान से, अंधेरापन नष्ट होता है रोशनी से, हाँ। तो ये लोभ की भावना को आप नष्ट कर सकते हो निष्ठा दृढ़ होकर अगर आप भक्ति के मार्ग में प्रवेश करो। फिर नारद मुनि जी कहते हैं हाँ तो लोभ को त्याग सकते हो। तो ब्राह्मणों में लालच नहीं होना चाहिए, और अगर लालच रखना है तो भगवान के लिए लालची बनो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। भगवान के लिए लालची बनने का क्या अर्थ? कि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में भगवान की सेवा की जाए, अधिक से बड़ा मंदिर बने, खूबसूरत से खूबसूरत श्रृंगार हो भगवान का। भगवान के लिए आप लालची हो सकते हो, तो अपने स्वार्थ के लिए लालची नहीं, ये अवश्य है। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि ब्राह्मणों के क्या गुण होने चाहिए। जैसे कि ब्राह्मणों के विषय में भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, समो दमो तपो सोचम शांति अजवम एवज ज्ञानम ज्ञानम अस्त क्यम धर्म कर्म स्वभा कजम। तो हरे कृष्ण, खुद ही कर गया, हरे कृष्ण। तो भगवद गीता में हरे कृष्ण, भगवद गीता में ब्राह्मणों के गुणों का, भगवद गीता में ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन किया जाता है। समाज में ब्राह्मणों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्र में तुलना की जाती है ब्राह्मणों का शरीर के सिर के साथ, क्षत्रियों का बाहों के साथ, हाथ के, तो वैश्यों का पैर के साथ, और शूद्रों का पैर के साथ। और सिर के बिना किसी के शरीर को आप देखते हो, हाथ के बगैर देखते हो, आंख के बगैर देखते हो, कान के बगैर देखते हो, पांव के बगैर देखते हो, पर सिर के बगैर नहीं देख सकते, कोई भी संभव नहीं है। इसी प्रकार समाज में ब्राह्मणों का होना बहुत महत्वपूर्ण है, पर हमें शुद्ध ब्राह्मण बनना चाहिए, नाम के लिए ब्राह्मण नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और ठाकुर भक्तिनोद जी पहले महान आचार्य थे जिन्होंने प्रचार किया स्पष्ट खुले रूप से कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों के आधार पर और पैदाइशी पर नहीं। ऐसी स्थिति हो गई थी कि एक समय ब्राह्मणों ने यह निर्णय किया था कि हमने भक्ति सिद्धांत जी को खत्म कर देना है, और वो पुलिस वाले के पास गए थे 25,000 रुपए लेकर। उस जमाने का 25,000 आज का कितना होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 25,000 रुपए लेकर गए थे और पुलिस वालों को उन्होंने कहा हम कुछ करने वाले हैं इस संत को, तुम कुछ करना नहीं। पुलिस वालों ने कहा हम लेते जरूर हैं पर संत को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तो पुलिस वाले ने आकर भक्ति श्राम जी को सूचना दे दी कि आप संभल कर रहना, आपकी जान को खतरा। तो व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों पर आधारित, और ब्राह्मणों में ये गुण होने चाहिए, शांति प्रियता समो दमो आत्म स्वयं तपस्या पवित्रता सहिष्णुता सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान और धार्मिकता। इन गुणों के द्वारा हम ब्राह्मण को पहचानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, शांति प्रियता। तो शांति प्रियता होनी चाहिए ब्राह्मणों में। शांति कैसे आएगी, आज जहां देखो वहां अशांति है समाज में, है कि नहीं। अशांति का कारण क्या है, सब लोभ से भरे हुए हैं, इसलिए सब एक दूसरे से युद्ध करने को तैयार हैं। तो शांति प्रियता आएगी जब हम ये स्वीकार करें कि परम भगवान हर चीज के स्वामी हैं। जब रुक्मिणी का विवाह होने वाला था शिशुपाला के साथ, तो रुक्मिणी ने एक सूचना भेजी ब्राह्मण के हाथ कि मुझे यहां से ले जाओ। तो जब भगवान ने ब्राह्मण का स्वागत किया उनके चरण धोकर, तो भगवान ने पूछा क्या तुम्हारा मन संतुष्ट है, क्या मन शांत है? क्योंकि जब मन शांत नहीं रहेगा भक्ति में तुम प्रवेश नहीं कर सकोगे। तो मन शांत होगा अगर हम भगवान की शिक्षा का पालन करें और भगवान की शिक्षा के आधार पर जीवन को बिताने का प्रयास करें। आत्मा स्वयं संभव हो सकता है जब आपके पास अच्छा कार्य हो करने के लिए। भक्ति के द्वारा आप इंद्रियों का उपयोग करते हो भगवान की सेवा में, अब हरे नाम का उच्चारण करते हो, भागवत का उपदेश सुनते हो, इनके द्वारा आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते हो आत्मा स्वयं बनने के लिए। फिर तपस्या, जैसे जिस प्रकार भौतिकवादी अपने आप को सजाते हैं ध्यानों से सुंदर वस्त्रों से, हम भक्त अपने आप को सजाते हैं तपस्या के गुणों के द्वारा। तो तपस्या जो है हमारा असली धन है, और अगर हम तपस्या से डरते हैं तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। फिर पवित्रता कैसे आती है, पवित्रता प्राप्त होती है भक्ति की विधियों का पालन करके। सहनशील आप कैसे बनोगे, चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा, त्रिनादपि। हाँ, तो कैसे ये आएगी, ये गुण आएंगे भक्ति की विधियों का पालन करके। फिर सत्यनिष्ठ, कैसे निष्ठा के बिना आप भक्ति में आगे कैसे बढ़ोगे, तो निष्ठा आती है फिर से भक्तों की संगत और भक्ति की विधियों का पालन करके। ये सारे गुण आते हैं भक्ति की विधियों का पालन करके, ज्ञान विज्ञान और धार्मिकता। तो ये गुण हम भक्तों को अनुकूल करना चाहिए, चाहे आपकी ब्राह्मण दीक्षा नहीं भी हो। हम सब जो कि संस्था में प्रवेश करते हैं भक्ति के मार्ग में जुड़ना चाहते हैं, हम सबको इन गुणों को अनुकूल करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम ध्यान से जप करें सावधानी के साथ, 10 अपराधों से बचते हुए अगर हम भक्ति की विधियों का पालन करें, तो अवश्य ही इन गुणों को अनुकूल कर पाएंगे और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे, और काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से हम अपने आप को बचा पाएंगे। तो संक्षेप में इन 2 श्लोकों में हम देख रहे हैं कि पुरोहित वशिष्ठ जी बहुत क्रोधित हो गए जब उन्होंने देखा कि महाराज दिम्मी ने यज्ञ शुरू कर दिया है, और महाराज दिम्मी को उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारा भौतिक शरीर नष्ट हो जाएगा। बिना किसी कारण के उन्होंने श्राप दिया था, तो दिम्मी ने भी उनको श्राप दे दिया। तात्पर्य में हम पढ़ते हैं कि हमें लालची नहीं होना चाहिए, और जो असली ब्राह्मण है वो केवल यही चाहता है कि वो तन मन धन से भगवान की सेवा करे। जिस प्रकार ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं, मनस देह गेह योग किशोर मोरा अर्पिलम तुय पदे नंद किशोर। हे प्रभु, मैं अपने धन दौलत समरी पत्नी बच्चे सबको आपके चरणों में अर्पण करता हूँ, आप इनका उपयोग करेंगे जैसे आपको ठीक लगे। ये होनी चाहिए भावना असली ब्राह्मण की। हरे कृष्णा।